ईशान पहले कुछ उलझा, फिर सर हिलाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कमरे में बैठा ईशान कशिश का इंतजार कर रहा था। बीते दिनों वो भी काफी व्यस्त था, इसलिए कशिश से बात नहीं कर सका था, पर आज वक्त था इसलिए बात करने का फैसला किया था। लेकिन अब कशिश ही गायब थी। देखते देखते दो घंटे बीत गए, पर कशिश नहीं लौटी। आखिरकार उसने हार कर कशिश को फ़ोन किया, पर कशिश का फ़ोन ऑफ था। लापरवाह थी वो, अक्सर फ़ोन चार्ज करना भूल जाती थी, जिसके लिए ईशान ने कई बार उसे समझाया भी था, पर उसकी आदतें नहीं सुधरती थीं। ये सोचते हुए ईशान ने अफसोस से सर हिलाते हुए रजनी को फ़ोन लगा दिया। कुछ दो तीन रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से रजनी ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो ईशु। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ईशान ने भूमिका बांधते हुए बात की शुरुआत की। दूसरी तरफ से रजनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और खुश भी कि आखिरकार आपकी गृहस्थी भी बस गई, पापा की इच्छा पूरी हो गई और अब आप जीजू के साथ खुश हैं। ईशान की सच्ची भावनाएं जाहिर हुई थीं, जिन्हें रजनी बखूबी समझ रही थी। आखिर जानते थी कि उनकी शादी के लिए उसका भाई कितना परेशान था। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद उसने असल बात छेड़ी और बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बोला, दीदी कशिश अब तक वहीं है, मैं आऊं उसे लेने? कशिश तो यहां नहीं, रजनी की उलझन और हैरत से मिलीजुली आवाज आई। ईशान ने अगला सवाल किया, कशिश घर के लिए निकल गई? वो तो आई ही नहीं, रजनी ने एक बार फिर हैरान परेशान लहजे में जवाब दिया। ईशान, जो बात को अब तक बड़े ही हल्के में ले रहा था और बिल्कुल निश्चिंत था, उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। माथे पर बल डालते हुए उसने हैरानी से सवाल किया, कशिश आज आपसे मिलने नहीं आई? नहीं तो क्या हुआ ईशु, तुम कशिश के बारे में ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्या कशिश घर पर नहीं? ईशान समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कशिश की चिंता भी हुई और वो कुछ परेशान भी हो गया कि आखिर जब रजनी के पास जाने का बोलकर गई थी तो वहां पहुंची कैसे नहीं, और अगर वहां नहीं गई तो गई कहां और इतनी देर से कहां है। मन में अब सवालों का तूफान उठ रहा था और दिमाग भी उलझा हुआ था, पर ये सब बताकर वो रजनी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी परेशानी छुपाते हुए सामान्य अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं दीदी, वो सुबह कशिश कह रही थी कि आपसे मिलने जाएगी, मैं बाहर था तो सोचा कि उसे भी साथ घर लेता चलूं, पर शायद उसने अपना इरादा बदल दिया, आपके पास आई ही नहीं। अच्छा, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी कुछ काम है मुझे। ईशान ने किसी तरह बहाना बनाकर बात घुमाई और फ़ोन काट दिया। कोशिश तो उसने पूरी की थी, पर रजनी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकी। इधर ईशान ने फ़ोन काटते ही दोबारा कशिश का नंबर मिलाया, पर उसका फ़ोन ऑफ था। ईशान के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए और माथे पर सिलवटें पड़ गईं। कशिश की चिंता सताने लगी, जाने कहाँ और किस हाल में होगी। वो कहीं जाती भी तो नहीं थी, अकेले कभी बाहर भी नहीं निकली थी, रास्ते तक याद नहीं थे उसे। अभिषेक के घर, उसकी दुकान, चाचा जी की दुकान के अलावा कोई और जगह मालूम भी तो नहीं थी उसे। यही सब सोचते हुए ईशान तेजी से बाहर निकला, आंगन से होते हुए सीधे घर से बाहर निकल गया और अगले ही पल उसकी बाइक बनारस की तंग गलियों की खाक छान रही थी। धीमी रफ्तार में बाइक आगे बढ़ते हुए बनारस की हर गली, हर नुक्कड़ को पार करते हुए उन तंग गलियों में भटक रही थी और ईशान की बेचैनी से चहूं और नाचती पुतलियां हर जगह कशिश को तलाश रही थीं। बाइक लंका से लेकर बाजार तक भटकी, अपनी दुकान से चाचा जी की दुकान तक हर जगह उसने कशिश को तलाशा। वक्त उसकी मुट्ठी से रेत जैसे सरकता गया और हर बीतते पल के साथ उसकी चिंता, फिक्र, घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसकी बाइक आज पूरे बनारस में भटकी थी, हर जगह तलाशा उसने कशिश को, जहां हो सकती थी वहां भी, जहां नहीं हो सकती थी वहां भी। बाइक से उतरकर लोगों से भी पूछा, उसकी तस्वीरें दिखाकर सवाल किया, उनके आगे मिन्नतें की कि ठीक से याद करें, बदले में हर बार निराशा ही हाथ लगी। कई बार लोगों के कहे शब्द उसका सीना भेद गए कि पहले माँ छोड़कर भाग गई और अब बीवी। बड़ा बदनसीब है जो पहले माँ ने दुनिया के सामने जलील किया और बीवी ने उसकी रही सही इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये जुमले सुनकर उसका दिल खून के आंसू रोया था। जानता था वो कि कशिश ऐसी नहीं थी, उसके किरदार पर उठे सवाल उसका खून खौला रहे थे, पर वो इतना बेबस और लाचार था कि उन्हें पलटकर जवाब तक न दे सका। अपनी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछालने वालों, उस पर ऐसे भद्दे आरोप लगाने वालों के मुंह नहीं तोड़ सका, बस शर्मिंदा होकर रह गया और फिर हार कर लोगों से पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि अपनी और कशिश की इज्जत का और तमाशा नहीं बनाना चाहता था। कहीं कशिश को कुछ हो तो नहीं गया, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई वो, दिल ये सोचकर खौफ से भर गया था। बाइक लेकर बदहवास सा बनारस की गलियों में कशिश को ढूंढ रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसने कशिश को तलाशा था। ऐसी एक जगह नहीं थी जहां वो कशिश को ढूंढते हुए न भटका हो, पर कशिश का कहीं कोई अता पता नहीं था। थक गया था वो, हार गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जिंदगी की बाजी हार गया हो। सांस लेना दुश्वार हो गया था, सर दर्द से फटने लगा था और आँखें उसे तलाशते तलाशते पथरा गई थी। उम्मीद दम तोड़ने लगी थी और दिल घबराहट और खौफ से भर गया था। समझ नहीं पा रहा था कि जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे ढूंढे उसे।
शाम गहराने लगी थी। आकाश में चमकता सूरज अपनी किरणों को समेटते हुए गंगा नदी की गहराई में डूबने को तत्पर था। शायद वो भी अब ईशान के ही तरह थक गया था और उन गंगा मैया की ममता भरी गोद में थोड़ा स्थान मांग रहा था, जिन्होंने जाने कितनों को अपनी शरण में लिया था। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें आकाश में लालिमा बिखेर रही थी। बिल्कुल वैसी ही लालिमा ईशान की आंखों में भी उतरी थी। उसका मन व्याकुल था और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसे अपने अंदर कुछ टूटकर बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। शायद ये उसकी उम्मीद थी जो कतरा कतरा बिखर रही थी और उसकी किरचें उसके वजूद को लहूलुहान कर रहे थे। उन सुर्ख गुलाबी आंखों में तड़प और बेचैनी साफ झलक रही थी। सफर का थका मुसाफिर अक्सर आराम की तलाश में अपनी माँ को तलाशता है, क्योंकि उस गोद में हर बेचैनी और थकान से राहत मिलेगी। ईशान भी अब कशिश को ढूंढते ढूंढते थक गया था, हार गया था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थीं, पर घर जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। थका हारा वो नाउम्मीद होकर घाट की ओर बढ़ गया।